रात में बन जाते हैं तो प्रेम नहीं बनता। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम का उच्चारण में कोई अपराध नहीं, विचार तो लाए किसी अपराध को नहीं लेते हैं। बड़े दयालु इसलिए उनका धाम भी बड़ा दयालु मायापुर धाम नवद्वीप धाम। ऐसे नामों में जब रुचि आती है कृष्ण नाम में रुचि बढ़े तो सारे बंधन कट जाते हैं। अभी हमें कष्ट क्यों है,
Thank you.
वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके नमस्ते सारस्वती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हम आप सबका स्वागत करते हैं श्री श्री राधा गोपालानंद मंदिर. हम जिस संप्रदाय में आते हैं जिसे ब्रह्म मतलब गौरीय संप्रदाय कहते हैं, इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है. हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं बड़े उत्साह से, रथ यात्रा मनाते हैं. आज चैतन्य महाप्रभु का अगर भाग दिवस है, वही कृष्ण जो आज से करीब 500 वर्ष पूर्व नदिया डिस्ट्रिक्ट मायापुर हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उन्होंने दिया. एक ऐसा मार्ग हमें दिया जो आज तक किसी आचार्य ने नहीं दिया, भगवान के किसी अवतार ने नहीं दिया. ऐसे मार्ग को चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए दिया. हम सबको उन्होंने योग्य बनाया भगवान की भक्ति कर सकें. तो हम लोगों की क्या योग्यता है कि हम श्रीमद् भागवतम को छूते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, केवल भगवान को प्रणाम करने के लिए भी योग्यता चाहिए. और फिर भगवान का नाम लेना, भगवान के भक्तों के संग में रहना, भगवान की भक्ति करना, इसके लिए तो बहुत ज्यादा सुकृति अर्जित करनी पड़ती है. लेकिन हम लोग देख सकते हैं अपने स्वयं के अनुभव से कि हम लोगों ने कोई सुकृति शायद अर्जित नहीं की थी, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण हम सब इस भक्ति मार्ग में आ सके. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए ही हैं ऐसे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से उनका उद्धार करने के लिए. भगवद गीता में भगवान बताते हैं, देशावहम सदुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्था मैयावेशम. ऐसे लोगों को जो मेरी ओर मुड़ेंगे, देशाम जो मेरी भक्ति करेंगे, मैं स्वयं आकर इस मृत्यु संसार से ले जाऊंगा. घोषणा भगवान ने की और उस घोषणा को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम सब उनके इस हाथ का सहारा लेकर इस भव सागर को पार कर जाए. चैतन्य महाप्रभु का हाथ बहुत लंबा है, वो छोटा नहीं है. चैतन्य महाप्रभु का हाथ उनसे शुरू होकर अन्य आचार्यों के द्वारा होते हुए, गोस्वामियों के द्वारा होते हुए, श्रील प्रभुपाद के द्वारा
और उसको पकड़ने के साथ ही हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं। अर्थात जब कोई श्री प्रभुपाद का आश्रय लेता है संस्था में, तो स्वतः ही कृष्ण से जुड़ जाता है। अनायास सफल हो गए जीवे रची, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वैसे चैतन्य महाप्रभु का आज अगर भाव दिवस है, चैतन्य महाप्रभु आज से करीब 500 वर्ष पूर्व अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 18 फरवरी 1486 को अवतरित हुए थे। अभी हम लोग 2006 में हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु का आज अगर भाव हम लोग मना रहे हैं, तो हमने सोचा आज के दिवस पर भागवतम के एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा की जाए, क्योंकि कई लोगों में ये भ्रांतियां हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो कई बार लोग एक प्रश्न करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहां बतलाया गया है, क्योंकि अवतार होना, भगवान का आना, इनका वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तब हम थोड़े से श्लोकों को पढ़कर समझ जाते हैं कि हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर हम लोगों को बतलाएं कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु चंद अवतार हैं, उनका वर्णन नहीं है, तो स्वीकार नहीं। इसलिए आज हमने सोचा कि ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें हमें यह विश्वास हो जाए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और साथ ही साथ हम दूसरों को भी यह विश्वास दिला सकें। इसीलिए आज हमने भागवतम का ये श्लोक चुना है। ये प्रसंग है निमि महाराज का। निमि महाराज नव योगेंद्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर नव योगेंद्र देते हैं। बहुत सुंदर कथा है, भागवत धर्म का वर्णन है इस प्रसंग में। तो निमि महाराज एक प्रश्न करते हैं, वो युग अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि जो अलग अलग युग अवतार होते हैं उनका क्या रंग होता है, उनका क्या नाम होता है, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। जब इन प्रश्नों को निमि महाराज ने पूछा तो गर्भाजन मुनि इसका उत्तर देते हैं, और इसके उत्तर में कई अवतारों का वर्णन करते हैं, जैसे कृते शुक्ल सतयुग में भगवान के जो अवतार हुए उनका रंग जो था शुक्ल रंग था, सफेद रंग के थे, चतुर्भुज रूप था, ऐसा वो वर्णन करते हैं। फिर सतयुग के बाद वो वर्णन करते हैं त्रेता का, जिसमें हम लोगों को यज्ञ करना होता है, तो उसमें लाल रंग के हुए भगवान। फिर वो वर्णन करते हैं द्वापर का, और द्वापर में श्याम रंग के हैं भगवान स्वयं श्री कृष्ण। और फिर उसके बाद वो वर्णन करते हैं कलयुग का, कृष्ण वर्णन विशा कृष्ण सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय विजयती बताते हैं कि कलयुग में कृष्ण अवतार लेते हैं, कृष्ण वर्णन तुषार कृष्ण, लेकिन उनका जो वर्ण है वो अकृष्ण है, और ऐसे वो आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं, सांगोपांगास्त्र पार्षद, अपने अस्त्र को लेकर आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, और क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, कलयुग के लोगों को करो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचि सुधा। पुराणों में वर्णन है, भगवान स्वयं कहते हैं कि कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करने के लिए, युग धर्म को स्थापित करने के लिए भविष्यामि सचि सुधा, मैं सचि सुत के रूप में आऊंगा, सची माता के पुत्र के रूप में आऊंगा। ये पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है भगवान ने, तो इस संकीर्तन आंदोलन को देने के लिए आए। और उसके बाद गर्भाजन मुनि उनके कार्यों का वर्णन करते हैं और फिर गुणगान करते हैं, और उस गुणगान में ये एक श्लोक वो कहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का। तो आइए इस पर चर्चा चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनेंगे इस श्लोक के द्वारा।
सुराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्दवाधाः वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्वा सुदुस्यत्सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेश्वराय वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्दधाः वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यत्त्वा सुतस्य च सुरसिद्धगाच्य लक्ष्मीम् धर्मिष्ठाय वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्दवधाः वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्
वैष्णव आचार्यों ने इस श्लोक पर बड़ी सुंदर टीकाएं की है। श्रीपद श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि ये श्लोक भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। श्री राजीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है। अलग अलग आचार्य अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन इनमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये श्लोक तीनों के लिए कहा गया है। इतना सुंदर श्लोक है, एक ही श्लोक में भगवान के तीनों अवतारों का वर्णन किया, श्री गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वही चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने पूर्व में रावण को मारा था, और वही चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने गोपालन किया था। इसीलिए ये श्लोक इन तीनों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस श्लोक से तीनों का वर्णन होता है। श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि यहां पर बताया गया है कि त्यक्त्वा छोड़कर चले गए राज्य लक्ष्मी अपने राज्य को। हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री राम अपने राज्य को त्याग कर चले गए थे। कोई आसक्ति नहीं थी। जिस समय दशरथ महाराज ने उनसे कहा वन में जाने के लिए, तो तुरंत चले गए, उन्हें कोई आसक्ति नहीं रही। हालांकि लक्ष्मण नहीं चाहते थे, लक्ष्मण क्रोध कर रहे थे। लक्ष्मण तो कह रहे थे कि अभी दशरथ को ही बंदी बना लेना चाहिए, नहीं तो उनकी हत्या कर देनी चाहिए, मैं ही कर देता हूं, आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान राम ने कोई आसक्ति नहीं दिखलाई, तो इसलिए त्यक्त्वा राज्य लक्ष्मी छोड़कर चले गए बड़ी आसानी से। फिर आगे बताते हैं धर्मिष्ठ आर्य बच्चे, और भगवान धर्मिष्ठ हैं, हम तो जानते हैं कि भगवान राम ने धर्म का पालन किया। आर्य बचसा शब्द का अर्थ है आर्य यानी दशरथ महाराज के लिए कहा जा रहा है, वचसा यानी वचन। तो दशरथ महाराज के वचनों को पूरा करने के लिए हे भगवान श्री राम आम अरण्यम वन में चले गए, और वहां जाकर क्या किया, माया मृगम, एक माया शक्ति के द्वारा जो मृग बनाया गया था सोने का हिरण, माया मृगम दैत्य से अन्वधावत, आप भागे उसके पीछे, धावत यानी भागना। तो आप एक ऐसे माया के मृग, माया के द्वारा रचित जो हिरण था, जो असली नहीं था, नकली था, बनाया हुआ था, ऐसे स्वर्ण हिरण के पीछे आप भागे, ऐसे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। ले सकते हैं, भगवान गए जंगल में, अपने पिता के वचनों को पूरा किया भगवान ने, और धर्म का पालन किया, और फिर एक ऐसे मृग के पीछे भी भागे जंगल में जो कि रावण ने बनाया था, और जिसके बाद सीता का हरण हो गया। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी इस श्लोक को समझाते हैं। जीव गोस्वामी इस श्लोक को समझाते हैं कि कैसे ये श्लोक कृष्ण के लिए है। जीव गोस्वामी कहते हैं त्यक्त्वा मतलब छोड़कर चले जाना, राज्य लक्ष्मी यानी बहुत सारा ऐश्वर्य। कृष्ण ने कौन सा ऐश्वर्य छोड़ा, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, जहां पर राजा थे, राज्य था बहुत बड़ा। मथुरा के राज्य का ऐश्वर्य को छोड़कर वो वन में चले गए। कौन से वन में चले गए, वृंदावन में चले गए। त्यक्त्वा राज्य लक्ष्मी, और वो चले गए अरण्यम। और आर्य वचसा, उन्होंने कौन से आर्य के वचन का पालन किया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव ने कहा था कि आप अपने इस रूप को छुपा लो, नहीं तो कंस आपकी हत्या कर देगा। जब भगवान प्रकट हुए थे तो कोई साधारण बालक की तरह प्रकट नहीं हुए, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देवकी और वसुदेव बहुत चिंतित हो गए भगवान के लिए। ये प्रेम होता है वात्सल्य प्रेम। तो उस समय तुरंत कहने लगे कि आप अपने इस रूप को छुपा लीजिए, नहीं तो कंस आकर जैसे आपके बड़े भाइयों की हत्या की है ऐसे आपकी भी हत्या कर देगा। पहले छह पुत्रों को तो मार चुका था कंस, इसलिए आप छुपा लीजिए, आप चले जाइए यहां से, और उनके आदेश को आगे बचसा उनके आदेश का पालन करते हुए यथा अरण्य मन में चले गए। महाराज मृग, वो कौन से मृग के पीछे भागे थे? हमने तो आज तक नहीं सुना कि भगवान कृष्ण कोई ऐसे माया मृग के पीछे भागे हैं। जी गोस्वामी समझाते हैं, मान शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करता है, और ये माया यहां पर जो कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है तो ये अंतरंग शक्ति है भगवान की, अर्थात जिसका साक्षात रूप है श्रीमती राधा रानी। और मृग एक पशु को कहते हैं या हिरण को कहते हैं। तो माया मृग शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जिस तरह से भगवान की जो शक्ति है अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, कभी कभी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं या किसी पशु से खेलते हैं, तो कृष्ण राधा रानी के प्रेम वश उनके हाथ में एक खिलौना बन गए। ये माया मृगम शब्द का अर्थ है, अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रति पूर्ण रूप से उन्होंने प्रेम को प्रदर्शित किया। हम लोग सब जानते हैं जब कृष्ण रहते थे इस पृथ्वी में अपनी लीला प्रकट कर रहे थे तो किस प्रकार से विशेष प्रेम उन्होंने श्रीमती राधा रानी के प्रति दर्शाया। ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, नंद बाबा के साथ रहा करते थे, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने विशेष लीलाएं की जो उनकी सर्वोच्च लीलाएं हैं। वैसे ये माया मृगम और उसको उनके पीछे वो रहे या उनके साथ में उन्होंने लीलाएं की, इसीलिए ये माया मृगम शब्द कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कृष्ण जो मथुरा के ऐश्वर्य को छोड़कर एक वन में चले गए केवल अपने पिता माता पिता की इच्छा के लिए, उसको पूरा करने के लिए, और फिर वहां पर आकर एक माया मृग के समान वो रहे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कैसे ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के लिए भी उपयुक्त है, और वो बताते हैं बहुत सुंदर वर्णन वो करते हैं। वो कहते हैं त्यक्त्वा राज्य लक्ष्मी, कौन सी राज्य लक्ष्मी? चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ी थी। चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया था लक्ष्मी देवी से। इस जगत में हर कोई लक्ष्मी के पीछे पागल है, सब लोग धन चाहते हैं, जहां जाइए वहां देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं केवल धन कमाने के लिए, जीवन का और कोई ध्येय नहीं, उद्देश्य नहीं, केवल धन कमाना। जितना उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है उतना ज्यादा आनंद उनको आता है, पैसा कमा कमा के दूसरी जगह रख रहे हैं लेकिन आनंद खुद हो रहे हैं, खुद आनंदित हो रहे हैं। कभी कभी वो बैंक डूब जाता है या कभी कभी व्यक्ति ही डूब जाता है, लेकिन वो बढ़ाते जाते हैं अपने बैंक बैलेंस, उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। मृत्यु के समय ऐसा होता होगा कि ऐसे लोगों को पढ़कर बैंक बैलेंस सुनाया जाता होगा, आज की डेट में आपका ये बैंक बैलेंस है, और वो बड़ी प्रसन्नता से मृत्यु को प्राप्त होता होगा कि मैंने अपने जीवन में इतना कमाया, लेकिन लेके क्या गए? तो ऐसी लक्ष्मी देवी से चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया। ऐसी लक्ष्मी देवी उनके रहा करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, लेकिन फिर भी त्यक्त्वा छोड़ दिया था। और आगे बताते हैं धर्मिष्ठ, चैतन्य महाप्रभु धर्मिष्ठ हैं, धर्म का पालन करते हैं। वैसे तो भगवान के सभी अवतारों ने इसको दर्शाया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के रूप में आए, उन्होंने ज्ञान बांटा, धर्म क्या है उसको सिखलाया, इसीलिए धर्मिष्ठ कहा जाता है। भगवान कभी भी अधर्म नहीं सिखलाते, क्योंकि जो भी भगवान कहते हैं वही धर्म, जो वो करते हैं वही धर्म, चाहे वो छोटे से बालक के रूप में लीलाएं करें या युवावस्था में लीलाएं करें, भगवान की लीलाएं यही धर्म है। जैसे जब बचपन में चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे तो कभी कभी घर के बाहर भाग जाया करते थे, और बाहर जाकर सड़क पर लोगों से भिक्षा मांगा करते थे। छोटे से बालक थे लेकिन बड़े सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देखकर लोग तुरंत उन्हें भिक्षा देते, कोई मना नहीं करता था। और ऐसे वो जाया करते बाहर घर के और भिक्षा मांगते और फिर उसको लेकर तुरंत अंदर भाग कर आ जाया करते थे। फिर अंदर जो स्त्रियां होती थी, जब वो हरि बोल कहती थी तब वो उनको वो देते थे। अर्थात छोटे से बालक के रूप में ही वो सिखला रहे थे कि आगे चलकर मैं एक भिक्षुक बनने वाला हूं और उन सबको मैं अपनी कृपा प्रदान करूंगा जो हरि बोल कहेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। बचपन से ही इन चीजों को सिखलाया करते थे। सची माता तो इनके इन कार्यों को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती, ये करता कैसे, ये कहां से लाता। कभी कभी जब बहुत नुकसान कर लिया करते थे घर में तो छठी माता डांटा करती है, इतना नुकसान कर दिया। तो उस समय बाहर जाते थे, थोड़े समय बाद आकर छठी माता को सोने के सिक्के दे देते थे हाथ में, ये लो जो चाहिए वो ले आओ, मतलब मैंने जो नुकसान किया है उसकी चिंता मत करो, मैं कल फिर करने वाला हूँ तो पहले से खरीद कर ले आओ ताकि मैं उसको तोड़ सकूं। और छठी माता हाथ में सोने के सिक्कों को देखती थी, बड़ी हैरान हो जाती थी, ये कहां से ले आता है, कहीं से चोरी तो नहीं करता, कहीं को पुलिस वाले पीछे पीछे आ जाए, या कोई बहुत बड़ा योगी है अपनी योग शक्ति से इसको प्रकट कर देता है, या कोई देवी देवता इसको दे जाता है, समझ नहीं आता था। सची माता, सची माता जब से पैदा हुए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु तब से ऐसी स्थिति में, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो अपनी पीठ के बल लेते रहते थे, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता कुछ नहीं पाता, पीठ के बल लेते रहते थे। एक समय अब सारी स्त्रियों ने घेरे रहती थी, रोते रहते थे, हरी बोल बोलते थे, चुप हो जाते थे। एक समय सची माता अंदर आई तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अकेले लेटे हुए हैं पीठ के बल, और चारों तरफ घी और दूध और दही और मटके ऐसे फूटे हुए पड़े हैं। सची माता ने इधर उधर देखा, सारे कमरे में है, उन्हें समझ नहीं आया, बाहर गए देखने के लिए कोई है तो नहीं, कोई नहीं था, सब जगह देखा कोई नहीं है। आश्चर्य से भी दो मिनट सची माता कि कैसे ये मटके यहाँ, ये दही कैसे आ गए, ये दूध कैसे आ गए, ये घी कैसे आ गए, तो समझ नहीं पाए कि चैतन्य महाप्रभु उस अवस्था में भी अपनी लीलाएं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ग्वाल बाल हैं तो अपनी लीला करते हैं। एक समय चैतन्य महाप्रभु एक ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी बहुत विद्वान ज्योतिषी था, सब लोग उसको जानते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और उनसे जाकर कहा कि मैंने सुना आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, कृपया मुझे बताइए मैं अपने पिछले जन्म में क्या था। ज्योतिषी का कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपने गोपाल मंत्र का जप किया जिसका वो जप किया करते थे, और फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे, ये देखने लगे कि कौन है ये बालक, कौन है ये जो उससे पूछ रहा है। और जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो अचानक दिखाई दिया ये चतुर्भुज रूप भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद दिखाई दिया कि वसुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं और फिर वृंदावन में रखकर आ गए हैं। ये सब दृश्य देखा एकदम हैरान हो गए। फिर अचानक देखा कि ये छोटा सा बालक निर्वस्त्र कपड़े नहीं पहने हैं, केवल थोड़े से गहने पहने हुए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। अचानक उसका ध्यान टूट गया और फिर से उसने देखा और वही सौंदर्य वही तेज उसे इस बालक में दिखाई दी। ज्योतिषी को विश्वास नहीं, फिर से उसने आंखें बंद की, फिर से मंत्र का जाप किया, इस बार सही सही देखूंगा मैं, फिर से जाप करने लगा और फिर से देखा तो इस बार उसको दिखाई दे रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार। वो आश्चर्यचकित हो गया, सोचने लगा कि आज भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये बालक कौन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सामने बैठा बालक है ये कोई बहुत बड़ा योगी है, योग शक्तियों से मुझे प्रभावित कर रहा है। और एक भी चीज हो सकती है, ये शायद मुझसे बड़ा ज्योतिषी है, तो ये ज्योतिषी ये मेरी परीक्षा लेने आया है कि कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, मुझे बदनाम करने आया है। तो ऐसे सोचते सोचते उसने आंखें खोली। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, अरे भाई बताओ मैं कौन हूँ, पिछले जन्म में मैं कौन था? तो ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा है कि अभी मेरा ध्यान ठीक से नहीं लग रहा है, तुम दोपहर को आना तब तुम्हें बदलाऊंगा। ऐसे कहकर चैतन्य महाप्रभु को टाल दिया। ये चैतन्य महाप्रभु हैं जो धर्म सिखलाने आए हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो जो भी लीला है वो करें वो धर्म है, चाहे वो घर में मटके तोड़े चाहे वो मिट्टी खाएं, ये धर्म है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर में जाके सारे मटके तोड़ने चाहिए या मिट्टी खानी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने खाई सची माता को, उन्होंने धर्म सिखलाया था कि मिट्टी खाई। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी कभी जब उन्हें चोरी करनी होती थी, वृंदावन का स्मरण हुआ जाता था, तो पास पास के घरों में जाकर चोरी करने लगते थे, उनका दूध दही चुरा लेते थे, कुछ नहीं मिलता था तो मटके फोड़ देते थे, बड़ा गुस्सा आता था। कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था, अगर कुछ नहीं मिलता था तो दूसरी जगह ढूंढते थे। चैतन्य महाप्रभु तो गुस्से में मटके ही फोड़ देते थे, और फिर उसके बाद फिर भी कुछ नहीं मिलता था तो उनके बच्चे सो रहे होते थे उनको तंग कर देते थे, किसी को ऐसे उसके कान मरोड़ देते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें, बच्चा जोर जोर से रोने लगता तो भाग जाते थे। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की है। कभी कभी पकड़े भी जाते, तो जब पकड़े जाते चैतन्य महाप्रभु, और कोई व्यक्ति पकड़ता उनसे कहता कि अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, तो बड़े नम्र बन जाते और बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते कि इस बार मुझे छोड़ दीजिए, अगली बार नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूँ। तो बेचारा ऐसे मासूम चेहरे को देखकर वो छोड़ देते थे, ठीक है अगली बार नहीं करना। ऐसे लीला है जितने महाप्रभु ने की, धर्म सिखलाया। तो धर्मिष्ठ हमेशा धर्म का पालन करते हैं, और धर्म अपने आचरण से हमें सिखलाते हैं। जितने महाप्रभु ने जब गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, आगे चलकर लक्ष्मी देवी से उनका विवाह हुआ, ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग चैतन्य भागवत में बतलाया गया है कि किस प्रकार से उनका विवाह हुआ चैतन्य महाप्रभु का। पहले तो चैतन्य महाप्रभु के माता जी के पास, श्री माता के पास जब ये प्रस्ताव आया तो उन्हें पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु क्या कहेंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब वो व्यक्ति वापस जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने आकर माता से पूछा कि ऐसा क्या जवाब दे दिया, वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं था, आपको ऐसा नहीं कहना था। तो चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टि से कह रहे थे कि आपको हाँ कहनी चाहिए थी, मुझे लक्ष्मी देवी से विवाह करना है। तो फिर सची माता ने अगले दिन हाँ कह दिया, और फिर जो उनके पिता थे वो कहने लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल लड़की दे सकता हूँ और 5 हरितकी के पल दूंगा बस, और कुछ नहीं दूंगा, यही दहेज होगा। अगर स्वीकार करेंगे तो फिर विवाह मंजूर है, नहीं तो फिर आप अपने घर में खुश रहिए। लेकिन सची माता को तो लक्ष्मी देवी प्रिय थी, तो फिर विवाह हुआ। बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में किया गया है चैतन्य भागवत में कि कैसे ये विवाह हुआ, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक आदर्श गृहस्थ का जीवन अपने आचरण से दिखलाया। एक आदर्श गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहला कार्य किया करते थे अतिथियों का स्वागत। अतिथि यानी जो बिना बताए आ जाते हैं, ऐसे मेहमान, तो अतिथियों का स्वागत चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। जो भी उन्हें मिलता, जो भी उनके घर पे आता, नहीं भी आता तो बाहर से पकड़ कर ले आया करते थे, और फिर घर में आकर तुरंत आदेश देते थे सची माता को कि इतने इतने लोग आए हैं, तुरंत इनके लिए प्रसाद बनाइए। अब सची माता बेचारी किचन में जाती थी, देखती थी कुछ है नहीं बनाने के लिए, और यहाँ पर 15 लोग 20 लोग, एक बार 20 सन्यासी आ गए। चैतन्य महाप्रभु बाहर घूम रहे थे, देखा 20 सन्यासी आए हैं, तुरंत सबको कहा चलिए मेरे घर पे भोजन के लिए। देखा नहीं घर में कुछ है या नहीं है, चलिए। तो सारे 20 सन्यासी आ गए, बैठ गए, और फिर आकर कहा सची माता से कि 20 सन्यासी आए हैं, बहुत अच्छा सा प्रसाद उनको हमें देना है। सची माता ने कहा ठीक है। सची माता गई किचन में और देखा कुछ है ही नहीं, क्या बनाएंगे, सोचने लगी। लेकिन फिर बताया जाता है कि ऐसा हर बार होता था, और फिर वो बनाना प्रारंभ करती थी और किसी के लिए कोई कमी नहीं करती थी, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां पर बनाने के लिए आया करती थी, इसलिए कभी कमी नहीं थी। उन्होंने अपने आचरण से दिखलाया कैसे एक गृहस्थ जीवन होना चाहिए, कैसे अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा पतित है जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी अतिथियों का स्वागत नहीं करता, वो तो पशु पक्षियों से भी गया। सेवा नहीं कर सकते हैं, हमारी ऐसी स्थिति है, कृपया हमें माफ कीजिए। लेकिन अगर क्षमता होते हुए भी कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ग्रस्त जीवन में रहना व्यर्थ है, उसको नहीं रहना चाहिए, निंदित है। वैसे आचरण उन्होंने दर्शाया कि किस तरह और बड़े खुले दिल से वो धन, हालांकि बहुत अमीर नहीं थे, ऐसा नहीं था कि लाखों करोड़ों रुपए उनके पास, लेकिन फिर भी धन व्यय किया करते थे, धन इस्तेमाल करते थे सेवा। इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ने एक आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है इसको दिखलाया, सारे कार्य को पूरा किया, अपने पिताजी का श्राद्ध भी किया, जब गया गए थे वहां पर श्राद्ध किया उन्होंने अपने पिता का, इस तरह से एक आदर्श जीवन उन्होंने दर्शाया। चैतन्य महाप्रभु बचपन में जब लीलाएं करते थे उनके पिताजी बड़े आसक्त थे उनसे, चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथ मिश्र बड़े ही आसक्त थे, लेकिन अपने ज्ञान के द्वारा जगन्नाथ मिश्र भी दिखलाते हैं उनका क्या स्तर था। एक समय जगन्नाथ मिश्र को एक स्वप्न आया कि जिस प्रकार उनका बड़ा लड़का चला गया है विश्वरूप, हो सकता है ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हो। तो सुबह उठकर जब वो बतलाने लगे तो शची माता बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छा है, मेरे पुत्र को ज्ञान मिलेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। जगन्नाथ मिश्र ने बताया कि नहीं नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर इसको ज्ञान मिल गया इस भौतिक जगत का कि भौतिक जगत क्या है, केवल दुख है, अगर असली ज्ञानी बन गया तो ये भी विश्व रूप की तरह घर को त्याग देगा, क्योंकि ज्ञान मिलने से ये पता चलता है कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, कोई आनंद नहीं है, केवल दुख ही है, आनंद तो केवल भक्ति में है, केवल आनंद। तुम्हें ब्राह्मण की पुत्री होगी, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, जानती नहीं होगी, अगर इसे ज्ञान मिल गया चला जाएगा, और एक ही हमारी आशा है, अब कोई तो रहा नहीं है, कोई पुत्रिया नहीं रही, कोई पुत्र नहीं रहा, केवल एक ही आशा है, और ये भी अगर चला गया तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो इसलिए कल से मैं इसकी पढ़ाई बंद कर दूंगा, इसको कोई ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, रहने तो वैसे ही अंतर रहेगा बहुत अच्छा है, पता नहीं चलेगा इसको ये भौतिक जगत बहुत खालन है, इसको अनपढ़ रहे हैं, इसकी पढ़ाई बंद। शची माता को बड़ी चिंता हो गई, शची माता कहने लगी अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जीवन में सेटल कैसे होगा, अपना जीवन कैसे चलाएगा, और सबसे बड़ी चिंता क्या थी शची माता को, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो इसको लड़की कौन देगा। शची माता जगन्नाथ मिश्र से कहने लगी कि अगर इसने पढ़ाई नहीं की, आपने इसकी पढ़ाई बंद कर दी, तो ये कैसे धन कमाएगा, कैसे इसको कौन लड़की देगा। तो उस समय बड़ा सुंदर ज्ञान जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी को देते हैं, वो कहते भाई मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानती कि ये सारी चीजें जो तुम कह रही हो वो कृष्ण से आती हैं, कृष्ण एक दूसरे को साथ में लाते हैं, ये कृष्ण है जिनकी कृपा से व्यक्ति को पत्नी मिलती है या पत्नी को पति मिलता है, किसी ज्ञान के कारण नहीं मिलता है, और धन भी कोई ज्ञान से नहीं आता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। लेकिन देखो ऐसे कितने लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी दान लेने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो इसीलिए ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, ज्ञान से हमें यह सब नहीं मिलता है, ये सब तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है, और केवल भगवान ही हैं जो हमारा पालन करते हैं। इसीलिए अब मैं इसकी जितने भी शिक्षा जो ले रहा है उसको बंद करूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, बहुत धन कमाए, धन से क्या होता है,
वो कहने लगे अगर किसी के पास धन है और कृष्ण उस पर कृपा ना करें तो हो सकता है उसको ऐसी कोई रोग हो जाए जिससे वो धन का भोग नहीं कर पाए, तो क्या लाभ है ऐसे धन का। इसीलिए वो कहने लगे इसकी पढ़ाई वढ़ाई बंद। उन्होंने बुलाया निमाई यहां आओ। निमाई बेचारे आए। निमाई को कहा कि आज से तुम्हारा सारा पढ़ाई बंद, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, बस आज से पढ़ाई बंद। और ये कहकर वो चले गए। निमाई बेचारे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है चुप हो गए, स्कूल नहीं गए, पाठशाला नहीं गए, लेकिन बड़े क्रोधित हो गए, गुस्सा बड़ा है। और उसके बाद उन्होंने फिर से शैतानी शुरू कर दी, क्योंकि अब जाने नहीं दे रहे हैं तो क्या शैतानियां किया करते थे, दूसरा मित्र मिल जाते अपने ऊपर कंबल डाल लेते और बैल बन जाते और बैल बन के रात में जाकर लोगों को डराया करते, और फिर किसी के खेत में घुस जाते जहां पर केले का उसका बाग होता था, उसका बाग सत्यानाश कर देते। जब वो व्यक्ति आता देखता बैल आ गए हैं तो भागता चिल्लाता, तब तक ये भाग जाते थे। तो ऐसे सब मिलकर एक साथ ये सारी लीलाएं किया करते थे। कभी कभी घर के सारे बर्तन तोड़ दिया करते गुस्से में आकर, और कभी कभी ऐसा करते कि आसपास की गांव में जो लोग रहा करते थे उनके घर के आसपास, तो गांव में एक प्रथा होती है कि जो मल विसर्जन करने की स्थान है जो अकाउंट वगैरह वो बाहर होता है, घर में नहीं होता है। आज भी हम पुराने स्थान में जाए तो देखते हैं कि घर के बाहर होता है। आजकल तो प्रथा बदल गई है, घर के अंदर नहीं बेडरूम के अंदर ही होने लगा है। थोड़े समय में लोग बेडरूम टॉयलेट के अंदर बना देंगे, ऐसा होती है।
रास्ता है वहां से निकलना है, हर महल में पहले एक चोर रास्ता हुआ करता है,
तो जल्दी जल्दी इस और रास्ते से भागना है, कोई नहीं है हमारे साथ। तो गोपाल भान और राजा भागने लगे, भागने लगे, भागते 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 महल के बाहर आ गए, फिर भागने लगे। और गोपाल भान कह रहे हैं, महाराज मुझे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही है, शत्रु आ रहा है, भागिए भागिए। राजा भागने लगे भागने लगे, भागते भागते नदी के किनारे आ गए। सुबह का समय हो गया, राजा ने कहा कि गोपाल भान हम लोग बहुत बुरा आ गए, थोड़ा सा मुझे अपना जो पेट है साफ करना है, त्याग करना है, तो ऐसा करते थोड़ा सा रुकते। गोपाल भान कहने का, महाराज क्या बात कर रहे हो, पीछे शत्रु भरा हुआ मृत्यु है, आप फल के ना करेंगे, भागो यहाँ से। वहीं पर बोट खड़ी थी, तुरंत बोट में बैठे, भागने बोट में बैठे बैठे राजा कह रहे हैं, गोपाल भान गोपाल भान कुछ करो, महाराज शत्रु, अरे शत्रु ने गोपाल भान कुछ करो। तो राजा बड़ा परेशान हो रहा, अब वो है ही बीच में पानी में, राजा करेगी क्या, बोट चला रहे। तो उसने फिर बड़े गुस्से में आके गोपाल धाम को आदेश दिया, तुरंत नाव को पास ले जाओ, पैक पे लगा। महाराज शत्रु, अरे शत्रु गया भाग है, लगा हो गए वहां पर। तो तुरंत उसने जो नाव थी वो बताई, महाराज आप उतरेंगे तो देख पा रहे, भूल जाओ सब, भागे महाराज सब कुछ छोड़कर। और उसके बाद गए और फिर 5-10-15 मिनट बाद आए, और गोपाल धाम से कहा, हाँ सब बड़ा आ रहा है, महाराज बड़ी प्रसन्नता हो गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई। गोपाल धाम ने समझाया कि देखिए इस प्रसन्नता के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, ठीक है, आप जानते थे शत्रु पीछे लगा है, अगर आप मर के आगे बैठेंगे, पीछे से किसी ने तीर मार दिया तो क्या होगा, पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, लेकिन उसकी आपने चिंता नहीं की, और इस प्रसन्नता के लिए आपने अपना शत्रु को भी आप सामना करने के लिए तैयार हो। इसी को मैं बता रहा था कि उस दिन जो प्रसन्नता हुई है वो मल त्याग करने के बाद जो होती है वो प्रसन्नता है। सबसे महाप्रभु उस प्रसन्नता को बंद कर दिया करते थे, जब आपकी दरवाजा बंद कर रहे थे, सब अंदर बैठे चिता रहे हैं, और जानते थे निमाई ने कि निमाई झूठ में नहीं करते, मैं दरवाजा खोल रहे थे, निमाई वहां है, ट्रेन में भाग रहा है। अब आगे क्या होता होगा वो तो वर्णन नहीं किया है, केवल इतना ही वर्णन किया है, उनकी क्या स्थिति होती है हम तो नहीं जानते। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु किया करते थे, और लेकिन ये सारी लीलाएं केवल लोगों को आकर्षित करती थी, इन लीलाओं के होते हुए भी कोई उनसे दुखी नहीं होता था, कोई उनके ऊपर क्रोधित नहीं होता था, उनको बड़ा आनंद आता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का चेहरा देखते ही सब भूल जाते थे, सारे कष्टों को सारे दुखों को भूल जाते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को देखते और बड़े आराम से रहते। तो चैतन्य महाप्रभु धर्मिष्ठ हैं, धर्म का पालन करते हैं। आगे बताते हैं कि आर्य वचसा कि उन्होंने एक ब्राह्मण के श्राप को आर्य वचसा स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक समय श्रीवास ठाकुर से कहा कि हम लोग केवल दिन में कीर्तन करते हैं, रात को बेकार हो जाती है, पूरा पूरा रात सोना पड़ता है, तो क्या लाभ है, चलो अब से रात को ही कीर्तन करें। तो फिर दिन में बाहर वो कीर्तन किया करते थे, वो कीर्तन बड़ा सभ्य रूप में कीर्तन होता था ताकि बाहर के लोग आकर्षित हों, लेकिन जो रात्रि का कीर्तन होता था वो तो उद्दंड कीर्तन हुआ करता था, और उस कीर्तन में किसी को आने नहीं देते थे चैतन्य महाप्रभु, केवल उनके पार्षद रहते थे और वो कीर्तन किया करते थे, और ऐसा कीर्तन कि जिसको देखने के लिए आकांक्षा करते थे बड़े बड़े देवी देवता भी, क्योंकि देवी देवता हमेशा चाहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपने घर के लोगों को बुलाया करते थे तो आचार्य इस पर टीका करते हैं, आचार्य कहते हैं कि कितने भाग्यवान वो लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हाथ से भोजन का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इतना भाग्य है, तो कौन हो सकते हैं ये लोग। कई आचार्य समझाते हैं कि दरअसल ये सारे बड़े बड़े देवी देवता हैं, ब्रह्मा शिव नारद और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, वो एक भिक्षुक का रूप लेते हैं। देखिए बड़े बड़े देवताओं को अपनी स्थिति का बड़ा भान होता है, कोई छोड़ना नहीं, तो कभी अपनी गति छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये सारे देवता गौर लीला में भिक्षुक बनते हैं, भिखारी बनते हैं, किसके लिए, चैतन्य महाप्रभु के हाथों से प्रसाद को स्वीकार कर। कई आचार्य समझाते हैं ऐसा नहीं है कि वो सब केवल देवी देवता है। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले उन्होंने घोषणा की थी, पुराणों में इसका वर्णन है, कि मैं ऐसे लोगों पर कृपा करने आऊंगा जो बहुत साधारण जीव है और ऐसी चीज को मैं दूंगा जो ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी नहीं मिलती है। अर्थात आचार्य समझाते हैं कि साधारण लोग हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु पर विशेष कृपा कर रहे हैं इसलिए वो विशेष हो गए हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु कृपा किया करते थे तो आर्य वर्चस्व जब उन्होंने अपने एक पार्षदों के साथ कीर्तन किया करते तो उस समय किसी को अंदर नहीं आने देते थे। आज वैसे सबका उपवास है तो इसलिए थोड़ा समय और कीर्तन या भगवान का नाम होगा तो कोई वैसे भी आप लोगों को क्या करना है, दिन भर नाम ही लेना है भगवान का। और आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, आज हमारे ऑफिसों को दुकानों को वैसे ताले लगने चाहिए, लगते नहीं है बात अलग है लेकिन लगने चाहिए। और पूरा दिन क्योंकि उपवास है तो उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट बैठना, तो पूरा दिन मंदिर में बैठना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो आप लोग अगर पूरा दिन बैठने के लिए तैयार है तो हम पूरा दिन यहाँ बैठकर कथा कर सकते हैं लेकिन हमारे में कोई अनुभव नहीं कहेगा हमने देख लिया तो फिर तकलीफ हो जाएगी, बैठना पड़ेगा। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं कि आपको नहीं कुछ चिंताएं शुरू हो जाएंगी, मन विचलित हो जाएगा तो थोड़ा समय, लेकिन आज का दिवस महत्वपूर्ण है तो कथा लंबी होगी तो भगवान के नाम में आनंद भी आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु केवल पार्षदों के साथ कीर्तन कर रहे हैं लेकिन बाहर के लोग सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं अंदर, हमें क्यों नहीं आने देते। जब हम लोग किसी चीज के विषय में पता नहीं होता है तो उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ जाती है, जो चीज सामने होती है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते लेकिन अगर कोई कमरे में बंद है अंदर कुछ कर रहा है वो फिर बड़ी जिज्ञासा हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है सामने बैठकर, कभी कभी ऐसा आश्रम में हो जाता है कोई कर्मचारी पढ़ रहा है तो सब लोग देखते हैं पढ़ रहा है लेकिन वही कोई ब्रह्मचारी अगर दरवाजा बंद करके अंदर पढ़ रहा है तो उसमें सो रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो जिज्ञासा हो जाती है। तो लोगों को अलग अलग जिज्ञासा होने लगी क्या करते अंदर और हमें क्यों नहीं आने देते। एक ब्राह्मण कहने लगे जरूर ये लोग कुछ गलत कार्य करते हैं, दरवाजा बंद करके रात के अंधेरे में स्त्रियों के साथ गलत कार्य करते हैं, इसीलिए हमें आने नहीं देते, इसीलिए जाने नहीं देते। कोई कहता कि नहीं पता नहीं ये लोग कोई काला जादू वगैरह तो नहीं करते हैं, क्या अकेले में अंधेरे में क्या करते हैं। तो एक समय एक ब्राह्मण गए सराहने के और उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटा, खोलो खोलो मैं अंदर आना चाहता हूँ। महाप्रभु और उनके भक्त कीर्तन में इतने नींद थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो रात भर दरवाजा खटखटाता रहा, हाँ छोड़ना नहीं खोलो खोलो, रात भर घर आंखें लाल लाल इतनी मोटी हो गई उसकी। आप कभी रात को नहीं सोए तो हो जाता है दिन भर और वो भी बेचारा रात को टेंशन में था, दरवाजा खटखटा के हाथ थक गए महाप्रभु खोले तो वो सुबह चला गया और फिर गंगा के किनारे गया और चैतन्य महाप्रभु अब अपना कीर्तन वीर्तन करके गंगा में स्नान के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा अपना जो जनेऊ था उसको तोड़ा उसने और जनेऊ तोड़कर हाथ में लेकर उसने श्राप दे दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कभी भी कोई भौतिक जो सुख है वो प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि बोल बहुत अच्छा है और प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उन्होंने कहा अब मेरी दूसरी लीला करने का समय आ गया है। तो आर्य वचसा ऐसे ब्राह्मण के वचनों को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उसको स्वीकार नहीं करते, उनके लिए क्या आवश्यक है किसी का श्राप स्वीकार करना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया आर्य वचसा। और फिर अरण्य जंगल में चले गए, वन में चले गए, सन्यासी हो गए। फिर आगे बताते हैं माया मृगम इस शब्द का अर्थ चैतन्य महाप्रभु पर कैसे लागू होता है। माया शब्द हमने बताया भगवान की शक्ति को संबोधित करता है, माया देवी हम सब बड़ा प्रेम करते हैं उनसे और हमें उनके विषय में ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब हर रोज सुबह शाम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उनकी गोद में जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक उनकी गोद में बैठकर आराम करें, पिशाचीर कोरे गोले में गोद, तो गोद में बैठे हैं आराम कर रहे हैं, पूरा चारों खाने से धो गए उनको समर्पण कर दिया है। तो माया शब्द और माया मृगम, मृगम ये मृगेति शब्द कहते हैं भागने। तो ऐसे व्यक्ति जो माया के पीछे पड़े हुए, माया के पीछे भाग रहे हैं, अर्थात हम सब माया के पीछे भाग रहे हैं, तो माया मृगेति ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के पीछे चैतन्य महाप्रभु भाग, ये उनकी दया है, दया, ये उनकी दया है कि ऐसे लोगों के पीछे वो भाग रहे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई व्यक्ति उससे दूर भाग रहा है लेकिन उसको पकड़ रहा है और कह रहा है कि ये जो 10,000 रुपए 1,00,000 रुपए कहां जा रहे हैं, मत जाओ, चैतन्य महाप्रभु भाग रहे। व्यक्ति भाग रहा है, उनसे दूर भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, माया मृगम। हम सब चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जब तक शुद्ध नहीं होंगे माया के पीछे भागते हैं। ऐसे जीवों के पीछे चैतन्य महाप्रभु भागते। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारे वगैरह सर्वत्र प्रगत प्रकाश, प्रति घरे घरे दिय कर दे भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कौन ऐसा दयालु होगा जो ये कह रहे हैं कि हर एक घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, नहीं बाहर आ रहा तो जोर से खटखटाओ, बाहर आओ, और जब वो बाहर आए तो क्या कहो उसको, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण 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 हरे
और ऐसे
तो वंदे महापुरुष के चरणामृत वंदन, ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। विष्णु को इस तरह से आचार्य समझाते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने अलग अलग लीलाएं की। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इस तरह से लोगों को समझाने जाएं, जो लोग बहुत ज्यादा ज्ञान को मानते हैं तो लोग स्वीकार नहीं करते, हम कहें वो छुपे हुए अवतार हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं कहा शुकदेव गोस्वामी ने, लेकिन कहा है कृष्ण वर्णन तुषार कृष्ण शांत गोपांगर वही है। तो इस चीज का लाभ लोग उठाते हैं और खुद भी अवतार घोषित कर देते हैं कि वो जो कहा गया वो एक्चुअली मैं, मेरे लिए बताया था, क्योंकि छुपा हुआ है तो आप कैसे जान सकते हैं। मेरा भी गौरा वर्ण है, वृंदावन में एक है जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लंबे लंबे उनके बाल हैं और फिर उनकी फोटो घुमाते हैं, हम लोग गए थे एक बार रथ यात्रा में तो हमने देखा कि एक तरफ उनकी फोटो एक तरफ चैतन्य महाप्रभु की फोटो, उनको चैतन्य महाप्रभु का अवतार बैठते भी ऐसे हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे फोटो है तो दिखाते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं। और करते क्या है, वो बहुत सारे माता जी उनके फॉलोअर्स हैं, एक उनका बड़ा अच्छा सा महल है और खैर बाकी आप लोग सब अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को अवतार इन कारणों से कह देते हैं क्योंकि उनका वर्णन नहीं हुआ है, लोग कहते हैं वर्णन कहाँ हुआ है, दस नहीं बताया। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कम से कम 25 शास्त्रों में, और ऐसे शास्त्र ऐसे पुराण जो गौड़ वैष्णव शास्त्र नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे आपके गौड़ वैष्णव शास्त्रों में आपने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया, लेकिन ऐसे 25 पुराणों में चैतन्य महा में 25 पता है, पता नहीं और कितने होंगे, तो ऐसे 25 पुराणों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। गरुड़ पुराण में है, वायु पुराण में है, पद्म पुराण में है, अग्नि पुराण में है, संहिताओं में है, नरसिंह पुराण में है, कितने सारे पुराणों का वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का। और कैसे वर्णन है, उनका नाम दिया है, उनका कार्य दिए हैं, उनके माता पिता का नाम दिया है, सब दिया है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का कहीं वर्णन नहीं हुआ है, वो छन्न अवतार है, सारे पुराणों में पहले से वर्णन है, किसी ने पढ़ाई नहीं है। पद्म पुराण पढ़ते हैं शिव जी के अनुयायी, उसमें नहीं समझ में आता है, पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है कि कलयुग की शुरुआत में भगवान मैं स्वयं अवतार लूंगा भगवान कहते हैं। वैसे अलग अलग पुराणों में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, व्यासदेव से भगवान स्वयं कहते हैं, अहम एव क्वचित् ब्राह्मण संन्यास आश्रम आश्रितः हरि भक्ति गृहयामि करो पाप हरं हतम नरम। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, व्यासदेव से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अहम एव क्वचित् ब्राह्मण, मैं कभी कभी एक ब्राह्मण का रूप लेता हूं और फिर कब आता हूं और ब्राह्मण का रूप लेकर संन्यास आश्रम आश्रितः संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूं, उसका आश्रय लेता हूं और हरि भक्ति गृहयामि, हरि भक्ति को ग्रहण करता हूं। हम लोग हरि भक्ति हरि नाम तो हरि भक्ति को ग्रहण करता हूं और फिर वो हरि भक्ति सबको सिखलाता हूं। चैतन्य महाप्रभु यहां पर हरि भक्ति सिखलाने ही आए हैं। करो पाप हटम नरम, कलयुग के जितने भी नर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके सारे पापों को नष्ट करता हूं, किस द्वारा भक्ति सिखलाने के द्वारा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीयस्तमहं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग यही सिखलाने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, ये शरीर उन्होंने ग्रहण किया है। गौर पुराण में बताया गया है, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुतः। कब लिखे थे पुराण, कई हजारों साल पहले, और उसमें भगवान ने बताया है कि भविष्यामि भविष्य में मैं आऊंगा, अहम पूर्ण भविष्यामि स्वयं आऊंगा, पूर्ण मेरे अंश नहीं आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के अवतार, भगवान के अंश और भगवान के विस्तार, लेकिन यहां अहम पूर्ण भविष्यामि भविष्य में स्वयं पूर्ण आऊंगा, युग संध्या विशेषता, एक विशेष युग संध्या पर जो कलयुग की शुरुआत है, मायापुर नवद्वीप है। कहां अवतरित होगा? नवद्वीप में, मायापुर में, और भविष्यामी शची सुत, शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होना है। जिसे कितना साक्षात लिखा है, तो अभी वो नहीं कह सकता है कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये हो सकता है कि अपनी माता जी का नाम बदल सकते हैं, यदि से कभी माँ का नाम शची माता हो गया और मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु हो गया। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जरूर पुराण में भी बताते हैं, करल ब्रह्म संध्याय लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यासी गौरवित विग्रह, कि कलयुग में मैं आऊंगा और लक्ष्मी कांतो भविष्यति लक्ष्मी देवी का पति बनूंगा, ये भी बताया है। और फिर दारु ब्रह्म समीपस्थ कहां पर रहूंगा? जगन्नाथपुरी में, दारु ब्रह्म। और कब रहूंगा? संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु रहे संन्यास आश्रम, उन्होंने ग्रहण किया। कई अलग पूछ सकते ठीक है, सब तो पूछ ठीक है, लेकिन आप लोग चैतन्य महाप्रभु बोलते हो, उनको वो नाम कहां पर है? तो नरसिंह पुराण में उनका नाम दिया गया कि क्या नाम होगा उनका, बताते हैं। गोदरं परिपालयन् व्रजपुरे परं भरद्वापरे गौरांग प्रियकीर्तनः कलियुगे चैतन्यनाम प्रभु। वही कृष्ण जो द्वापर में गोपालन किया करते थे, जो द्वापर में गायों को चराया करते थे, वही गौरांग प्रियकीर्तनः, वही गौरांग महाप्रभु के नाम में, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। और कलयुग में चैतन्य नाम प्रभु, और क्या नाम है उनका? चैतन्य महाप्रभु। और इतना ही नहीं, पुराणों में उन्होंने वर्णन किया कि मेरे अलग अलग नाम होंगे, तो जिन नामों से हम उनको बुलाते हैं ये नाम पहले से ही पुराणों में बताए गए, तो बताते हैं कृष्ण चैतन्य गौरांग गौरचंद्र शचिसुत प्रभु गौर गौर हरि नामी भक्ति दानी में। कहते हैं कि उस कलयुग में कृष्ण चैतन्य मेरा नाम होगा, गौरांग नाम होगा, गौरचंद्र नाम होगा, शचिसुत नाम होगा, महाप्रभु नाम होगा और गौर हरि नाम होगा। और इन नामों का जो उच्चारण करेंगे नामी भक्ति दानी में, उनको मैं भक्ति दूंगा। सारा वर्णन पुराणों में किया गया है, शास्त्रों में किया गया है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप मायापुर में शचीसूत के रूप में प्रकट हुए, वही श्री कृष्ण हैं। इसका हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जब हम इस विश्वास से भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे, तब हम लोग अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इसीलिए आज के दिवस पर प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हमारे हृदयों के जितने भी अनंत हैं उनको दूर करें, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके द्वारा हम भगवान कृष्ण के नामों में रुचि प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग और अधिक कर दीजिएगा।
जय सच्चिदानंद Thank you.
Thank you. Priya Priya